मेरे आत्मीय युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 6 अक्टूबर 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस FEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अभी कुछ दिनों बाद ही होने वाली क्लासेस के लिए अपना दाखिला लेके कराया है। और इन दोस्तों के नाम हैं शुभम प्रियदर्शी, आप बोकारो झारखंड से हैं, और नगेंद्र, आप चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। तो शुभम और नगेंद्र, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है, हमेशा की तरह मैं कुछ सूचनाएं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो सूचनाएं ये हैं कि कल और परसों दो दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। साथ ही मित्रों, कल हम कुछ एडिशनल चीजें भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें योजना और कुरुक्षेत्र के दो दो आर्टिकल होते हैं, यानी कि दो योजना के, दो कुरुक्षेत्र के, लेकिन दो योजना के मतलब दो विषयों पर हो सकते हैं कि हो, उसका संबंध भाषा से है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, योजना का भी कुरुक्षेत्र का भी, तो टोटल मिलाकर के चार आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये आर्टिकल सामान्यतः इस तरह के होते हैं जो परीक्षा में, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन में, आपके लिए बहुत बहुत मददगार होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए, कि आप सब लिखने का अभ्यास कर सकें, और हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय के बारे में आपको जानकारी दूं, मैं आज फिर से एक मेल का उल्लेख करना चाहूंगा जो आप में से ही एक नौजवान साथी ने मुझे भेजा है। इनका नाम है अशोक कुमार, ये चंपावत उत्तराखंड से हैं। मैं उनके शब्द आपको ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूं, ज्यों का त्यों उनके शब्द पढ़ करके सुना रहा हूं। मित्रों, देखिए वो क्या लिखते हैं। सर, माइसेल्फ अशोक कुमार फ्रॉम चंपावत उत्तराखंड, समझ गए होंगे आप सब। सर, आई एम लिसनिंग रेगुलरली डेली ऑडियो एंड रीडिंग न्यूज क्लिपिंग्स ऑब्लिग करेंट्स, समझ गए होंगे कि सर मैं डेली ऑडियो सुनता हूं, और जो आप न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं और जो करेंट कंटेंट होता है वो भी पढ़ता हूं, राइट। अब देखिए कि उन्होंने जो बात लिखी, जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूं, उन्होंने लिखा है मित्रों कि सर, रिसेंटली आई अपीयर्ड इन उत्तराखंड पीसीएस मेन एग्जाम राइट, एंड आई मच बेनिफिटेड बाय योर गाइडेंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अब वो हिंदी में, रोमन लिपि में ही हिंदी कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के पीसीएस के मेन एग्जामिनेशन में अभी अभी अपीयर हुआ हूं, और मुझे आपके गाइडेंस से बहुत अधिक फायदा मिला है सर, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूं सर, कितनी बार आंसर राइटिंग करते हुए आपके वर्ड्स याद आए, और हर बार एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए आपको दिल से थैंक यू आया। सर, डायरेक्ट आपको देखने का सौभाग्य नहीं मिला, बट यू आर माई द्रोणाचार्य, थैंक्स ए लॉट। चलिए मित्रों, यहां जो सबसे बड़ी बात है, ये उन्होंने लिखा है सर, जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के मैंने ये फैसला किया कि मुझे इसके बारे में आप सबको थोड़ा सा बताना चाहिए, वो देखिए वो है कि आंसर लिखते समय, आंसर राइटिंग करते हुए आपके शब्द याद आए। मित्रों, मैं आपको हर वीक एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, और उसको लेकर के मेरे पास बहुत से मेल आते हैं कि सर इसका आप मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दीजिए। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं और आज मैं फिर से बताना चाहूंगा, मित्रों मैं मॉडल आंसर जानबूझकर प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानबूझकर इसलिए नहीं करता कि मैं अपने मॉडल आंसर को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। आप अपना आंसर तलाश कीजिए, और इस तलाश की प्रक्रिया में ही आपको लिखना आएगा। याद रखिए, आप मेरे मॉडल आंसर को पढ़ करके लिखना नहीं सीख सकते, किसी के भी मॉडल आंसर को लेकर लिखना नहीं सीख सकते, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि अशोक कुमार ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, कि वो शब्द याद आए और उससे मुझे फायदा हुआ। मित्रों, हो सकता है कि अभी ये बात मेरी आप लोगों को उतनी रुचिकर ना लग रही हो कि सर को हम इतनी बार कह रहे हैं, वो हमें आंसर राइटिंग करके दे ही नहीं रहे हैं। आपको गुस्सा भी मुझ पर आ रहा होगा, मैं जानता हूं, और आ रहा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, और आपका जो गुस्सा है वो मैं स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसकी प्रशंसा भी करता हूं, क्योंकि आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इसीलिए तो आपको गुस्सा आ रहा है। दूसरों पर तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा हमारे हमको उसी पर आता है जिससे हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं, और उम्मीद हम किन से करते हैं, अपनों से उम्मीद करते हैं ना। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं मान करके चलता हूं कि आप मुझे अपना मान रहे हैं, और मेरे लिए इससे बड़ी संपत्ति और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन मित्रों, यदि आप मुझे अपना मान रहे हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं आपको अपना मान रहा हूं, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा जो आपको कमजोर बनाए या आपके उस तरह से काम ना आ सके जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, की जो आंसर राइटिंग है वो आपके पढ़ने के ढंग से जुड़ी हुई है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिस दिन आप पढ़ना सीख जाएंगे, जिस दिन आप पढ़ना समझ जाएंगे, उस दिन आप आंसर राइटिंग करना भी अपने आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और सच पूछे तो ये डेली ऑडियो लेक्चर उसी का ही एक प्रयास है कि आप डेली सुने और देखें कि कैसे न्यूज की एनालिसिस की जाती है। जैसे आज के लाइफ मैनेजमेंट में ही मैंने केवल कौन बनेगा करोड़पति को जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी एक एनालिसिस की है। अगर इसी पर एक प्रश्न पूछ लिया जाए आपके जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर में कि आप बताइए कौन बनेगा करोड़पति से व्यक्तित्व का कौन सा प्रबल तत्व व्यक्त होता है, ये पूछ लिया जाए, अब आप बताइए। तो अब आप देख रहे हैं कि वो कैसे बताएंगे आप। तो मित्रों, मैं जो प्रेजेंट करता हूं चीजों को वो एनालिटिकल फॉर्म में ही होता है, वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ही होता है, और फिर हमारी जो 15 दिन की क्लासेस होती है उसका तो पूरा आधार ही यही है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, रेगुलरली इन चीजों को सुनें, सुनने के बाद इन पर थोड़ा सा विचार करें, जो मैं निर्देश देता हूं यदि आपको उन पर विश्वास है, भरोसा है, तो उसे फॉलो करते हुए एक्शन में आए, प्लीज एक्शन में आए, तब आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी। वो कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है और जरूरी भी है, उसके बिना बात भी नहीं बनेगी। तो मित्रों, ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी। आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप और भारत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, वक्त ज्यादा नहीं है। इससे पहले हम लोग थोड़ी से दो तीन पॉइंट हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं। देखिए, आप सबने सुना न्यूज में कि साहित्य का नोबल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो जापानी मूल के जो ब्रिटिश नागरिक हैं इस गुरु, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। खासकर नोबल पुरस्कार के तहत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दो पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, सामान्यतः अगर आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें एक है हमारे साहित्य का नोबल पुरस्कार और दूसरा है शांति का नोबल पुरस्कार। ये दो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण उस रूप में नहीं, परीक्षा की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि हैं। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या भारत में भी किसी को इस विषय पर नोबल पुरस्कार मिला है, साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला है। मैं न बताऊं तो मेरी समझ से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3/4 आप में से तो जानते होंगे कि किसे मिल गया है, और जो 1/4 नहीं जानते हैं वो जो जान रहे हैं उन लोगों से पूछने की कोशिश करें कि किसे नोबल पुरस्कार मिला है। ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, कुछ काम मुझे चाहिए कि आप लोगों पर भी मैं छोड़ूं। दोस्तों, इसके बाद न्यूज में आपने एक खबर सुनी कि पर्यटन पर्व मनाया जा रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही पर्यटन पर्व, पर्यटन के बारे में, भारतीय पर्यटन परंपरा के बारे में, कि आज हम सर्किट की बात करते हैं ना कि बौद्ध सर्किट और फलाना सर्किट, इस तरह से पर्यटन हम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है वहां जो पर्यटन की जो डेफिनेशन है वो नई हो सकती है, लेकिन भारत में ये नई नहीं है। भारत तो तीर्थ यात्रा के रूप में सदियों से पर्यटन की बात करता रहा है, और हमारे सर्किट की भी बात हो रही, जैसे चार धाम की यात्रा बड़े पुराने समय से हो रही है, तो चार धाम का मतलब वो चार धामों का एक सर्किट हो गया, राइट? तो वास्तव में जो भारतीय पर्यटन की जो परंपरा रही है उसके बहुत ही वाइड थॉट ऑफ है, वो बहुत ही उसके बारे में विस्तार से सोचा गया है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, पर्यटन करेंगे, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से समन्वय होगा, पर्यटन करेंगे, उसे सीधे सीधे धर्म और अध्यात्म से जोड़ा गया कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी रिफाइनमेंट भी आना चाहिए। तो भारत में जो पर्यटन का कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली वो ज्यादा व्यापक है और ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो मित्रों, पर्यटन एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक खबर फीफा के बारे में है। अंडर 17 फुटबॉल कप प्रतियोगिता जो है ना, विश्व स्तर की प्रतियोगिता होती है, पहली बार भारत में हो रहा है और ये दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई है। इसके बारे में आप अब लगातार अखबारों में पढ़ेंगे ही, इस पर थोड़ी सी नजर रखिएगा कि ये क्या है, क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा जब भी इसके रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो मित्रों, न्यूज के बारे में तो बस इतना ही। अब आइए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं अफ्रीका महाद्वीप और भारत पर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में। सन 2015 के मेंस में सीधे सीधे इस पर एक प्रश्न भी पूछा गया था। मैं आपको सबसे पहले उस प्रश्न से परिचित करा देता हूं। वो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न संख्या 17 2015 मेंस पेपर जो है, जनरल स्टडीज का ये है सेकेंड पेपर, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत स्ट्रेट होते हैं। क्वेश्चन है, अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, क्रिटिकली एग्जामिन। 200 शब्दों में लिखना है, 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये मान करके चलिए कि 2015 में भले ही ये पूछा गया है, लेकिन लगातार यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैंने इस विषय को आज इसलिए चुना है क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो अभी अफ्रीका देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, और मुझे भी राष्ट्रपति जी के साथ अफ्रीका के दो देशों में जाने का मौका मिला था। खैर, मैंने इसलिए नहीं चुना कि मैं भी वहां गया हुआ हूं। परीक्षा की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, जो अफ्रीका महाद्वीप है भारत के संदर्भ में इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि भारत के बड़े पुराने समय से उसके संबंध रहे हैं। अभी की बात नहीं है, बहुत पुराने। वैसे भी अफ्रीका महाद्वीप एक तरीके से जो मानव जीवन का एक ओरिजिन प्लेस रहा, यह माना जाता है प्राचीन काल का जो मानव है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका महाद्वीप में ही रहा करता था और धीरे धीरे फिर वो विश्व में फैलता चला गया है। कुछ फैक्ट्स हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और केवल विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप ही नहीं है बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी वो विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, राइट? जो टोटल लैंड एरिया है उसका 20% अफ्रीका महाद्वीप के पास है, जो काफी बड़ा है। 20% अफ्रीका महाद्वीप के पास है। आबादी लगभग 125 अरब के करीब है, 1 अरब 25 करोड़, 20-22 करोड़ के आसपास उसकी आबादी है। और आप देखिए कि जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, वही आता है कि वहां काले लोग रहते होंगे। जब काले लोग की बात हमारे दिमाग में आती है तो हम ये मानते हैं कि जनजातीय लोग होंगे, वो बहुत ही पिछड़े हुए लोग होंगे, जंगलों में रहते हैं। नो डाउट कि सच भी है। आज भी अफ्रीका महाद्वीप का जो मेन रिसोर्स है फॉरेस्ट है, साथ ही साथ तेल के भी वहां भंडार हैं। गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी होने के पीछे उनके भौगोलिक कारण बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर फिर अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो भूमध्य रेखा के आसपास जो जगह होती है वहां वर्षा बहुत होती है, जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है, और उसके कारण बहुत बहुत थिक फॉरेस्ट, जिसको आप कहें बहुत घने वन हो जाते हैं। तो वन जहां होंगे तो फिर आप देखेंगे कि दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, वहां दलदल जमीन होगी, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए आप देखें कि बहुत से जो नए नए वायरस जो निकल करके आते हैं, चाहे वो एड्स का हो, जीका वायरस हो, ये सब जो निकल करके आ रहे हैं, यही पता लगता है कि वो अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश से उनका जन्म हुआ है। कारण है कि वहां की क्लाइमेट कुछ इस तरह की है, और क्लाइमेट ने ही उसको विकसित नहीं होने दिया है। फ्रेंड, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, जिस बैकग्राउंड पर फिर आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और भारत के संबंधों के बारे में आगे जानना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसकी पूरी व्याख्या आपके साथ यहां कर सकूंगा। दोस्तों, गरीब देश है नो डाउट, और गरीबी का एक दूसरा बड़ा कारण यह भी रहा है कि उपनिवेशवाद से जैसे एशिया के देश ग्रसित रहे हैं, जिसमें हम भी हैं, उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप भी उपनिवेशवाद से ग्रसित रहा है। मतलब यूं कह लीजिए कि पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोपीय राष्ट्रों का शासन रहा है। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि यूरोप के कुछ देशों ने अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा टेबल पर फैलाया और फिर एक पेंसिल के जरिए विभाजित कर लिया कि ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया हमारा, ये एरिया इनका। तो बहुत लंबे समय तक उपनिवेशवादी शोषण का अफ्रीका महाद्वीप शिकार रहा है, और भारत से बहुत से लोग वहां भी, ब्रिटेन का शासन बहुत से देशों में रहा है। और आपको मालूम होगा कि दक्षिण अफ्रीका तो 1996 में आजाद हुआ है, और भारत की एक बहुत बड़ी बात है कि जब वहां आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे अफ्रीका महाद्वीप में, तो भारत खुलेआम उनका सपोर्ट करता था। उस समय नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मतलब अफ्रीका के बारे में भारत की दो स्पष्ट नीतियां रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो राष्ट्र स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, भारत हमेशा उनके पक्ष में खड़ा रहा। मतलब उपनिवेशवादी विरोधी हमारी नीति रही है। दूसरी बात यह है कि नस्ल भेद का हर समय हर मंच पर भारत ने विरोध किया है, यानी कि काले गोरे भेद को हमेशा भारत ने खंडित किया है, उसका खंडन किया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत और अफ्रीका एक दूसरे के बहुत निकट महसूस करते हैं। मित्रों, अभी हो ये रहा है कि जो चाइना है, अब वो लगातार अफ्रीका में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अफ्रीका के बारे में भारत अभी तक अपनी कोई नीति इस तरीके से ला नहीं पाया, ला करके उसे लागू नहीं कर पाया कि वो वहां बढ़ती हुई चीन की जो शक्ति है उसका मुकाबला कर सके। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जबकि आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का जो साउथ का पार्ट है, आपको चाहिए कि आप एक बार नक्शे में उसे लोकेट करें, हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में हम हैं, और हिंद महासागर की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा की एक गारंटी है कि हमें उसे सुरक्षित करना पड़ेगा। और चीन लगातार उधर चाइना से लेकर के हिंद महासागर में अपना फैलाव करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारे राष्ट्रपति जो जिबूती गए हैं, वो हिंद महासागर का ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां चाइना का पहला सैन्य अड्डा भी है। चाइना ने अपना पहला जो सैन्य अड्डा अपने देश से बाहर जो बनाया था वो जिबूती में ही बनाया है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीन की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको संतुलित करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और राष्ट्रपति जी की जो यह यात्रा है, इसे इस रूप में भी थोड़ा बहुत हमें देख लेना चाहिए। 54 देश हैं इसमें मित्रों कुल मिलाकर के। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है, भारत और अफ्रीका के बारे में मैं इतनी ही बातें आपके सामने रख सका हूं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, भले ही अभी के अक्टूबर एग्जामिनेशन मेंस का जो है उसमें आप न बैठ रहे हों। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। आज कुछ अच्छी क्लिपिंग्स आपके बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण हैं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं दक्ष रानी, अभिषेक त्रिपाठी, मनोज परमार, जसदेव सिंह, प्रद्युम्न यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से, अभिनव कुमार बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश से, अश्वनी चौधरी अलवर राजस्थान से, रवि आर्यन बेगूसराय बिहार से, खुवेंद्र सिंह भागवंतपुर उत्तर प्रदेश से, रुचिका मेघा और रोशनी जाट। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, और साथ ही इस बात की भी घोषणा करता हूं कि 2 दिनों के बाद हम आप फिर एक साथ मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। इन 2 दिनों के लिए बहुत बहुत अपनी पूरी टीम की ओर से मैं आप सबको अब शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।